Hare Krishna, lecture by His Grace Kesha Murari Prabhuji on 6th canto, 2nd chapter, text number 17, on 10th of July 2011.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण बलराम की जय। गौर प्रेमानंद जी, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। हमारे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5, 6 और अध्याय चल रहा है। तो अध्याय का नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्लोक संख्या बोर्ड पे 17। आप हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ते तानी अधानी पूयन्ते तपः दान व्रत आदिवी ना अधर्मजम् ततः हृदयम् तत अपि ईश अग्रह सेवया। श्लोक को दोहराने का प्रयास करें। ते तस्ने अधानि पूयन्ते तपोदान व्रत आदि भी ना धर्मजम् तद् द्रव्यम् तदपि शांघ्रि सेवया। ते स्थानि धानि पूयन्ते तपो दान व्रत आदि भी ना धर्मजम् तद् हृदयम् तदपि शांघ्रि सेवया। ते स्थानि धानि पूयन्ते तपो दान व्रत आदि भी ना धर्मजम् तदहृदयम् तदपि शांघ्रि सेवया। माताएं, हरे कृष्ण। ते उनके द्वारा तानी वे सब अधानी पाप कर्म तथा उनके फल पूयन्ते विनष्ट हो जाते हैं। तपह तपस्या दान दान व्रत आदि भी व्रतों तथा अन्य कार्यों के द्वारा ना नहीं। अधर्मजम अधार्मिक कार्यों से उत्पन्न तत उसका हृदयम हृदय त वह अपि भी ईश अग्नि भगवान के चरण कमलों की सेवया सेवा द्वारा। अनुवाद इस प्रकार है, यद्यपि तपस्या दान व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कलमशों से मुक्त कर दिया जाता है। आप लोग हमारे पीछे दोहराइए, यद्यपि तपस्या दान व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कलमशों से मुक्त कर दिया जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है, भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चा। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्ति करने वाला तुरंत ही पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पापपूर्ण हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ ही है इंद्र तृप्ति। इसमें ऐसा कर्म निहित होता है जो न्यूनाधिक पापपूर्ण होता है, किंतु शुद्ध भक्ति तो अन्य अभिलाषिता शून्य होती है। दूसरे शब्दों में यह उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती है जो कर्म तथा ज्ञान से प्रतिफलित होती है। जो भक्ति पद को प्राप्त होता है उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, अतएव वह पापमय जीवन से परे होता है। भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, अन्यथा भले ही किसी की तपस्या तथा दान फिलहाल उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होंगी, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इस तरह वह पाप कर्म करेगा और कष्ट उठाएगा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिने।
हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार आप सब भक्तों का स्वागत है और श्रीमद् भागवतम या अन्य जो ग्रंथ हैं इन सब का एकमात्र उद्देश्य इस भौतिक संसार में बार बार जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु सह रहे जीव कष्ट पा रहे जीवों को जो हैं शेल्टर प्रदान करना या उन्हें पुनः भगवान के चरणों पर वहां तक पहुंचाना। तो इन ग्रंथों का जो उद्देश्य है वो ये कि इन ग्रंथों का श्रवण कीर्तन हम जैसे बद्ध जीवों को जो कि वास्तव में इस संसार में इतने समय से हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हम वास्तव में कहां किस जगह से बिलोंग करते हैं या कहां से हैं हम पीछे से। अब ये सेंटेंस पीछे से बोलते दो तीन चीजें याद आ गई। लास्ट टाइम भी शायद बताई थी जब हम तिहाड़ जेल जा रहे थे रोज रेगुलर लेक्चर दे रहे थे तो एक व्यक्ति मिला हमको। हमने पूछा आप वैसे पहले कहां थे तो उसने बोला 6 नंबर जेल में। मैंने कहा नहीं उससे पहले कहां थे मतलब क्या तो उससे पहले 8 में था। मैंने कहा नहीं उससे पहले मतलब कहां थे क्या तो उससे पहले 5 में था। अरे मैंने कहा भैया कहने का मतलब है कि तुम इस जेल से बाहर भी कभी थे कि नहीं। कह रहे हां वैसे मैं पहाड़गंज से हूं। तो एक जीवन में भी व्यक्ति ज्यादातर इस तरह बताता है मैं पीछे मियांवाली से हूं या मैं पीछे पाकिस्तान से हम लाहौर से हम या वैसे किसे पूछो कोई कहता हम लोग इस जगह से हैं। तो ये एक साधारण सा आइडेंटिफिकेशन जो हमारा है या जो हमारा परिचय है सॉरी हम ये दे पाते हैं इसी के बारे में नॉलेज है इसी के बारे में ज्ञान है उतना ही परिचय दे पाते हैं। जबकि इन ग्रंथों का काम है कि हम लोगों की असली पहचान कराना हमारे अपने आप से कि हम कौन हैं कहां से बिलोंग करते हैं। जो भी हमसे पूछता है हम केवल एक टेम्परेरी बायोडाटा जो हमारा है जो कि जीवन भर चेंज ही होता रहता है वो बताते हैं लोगों को। और इस प्रकार की पहचान के कारण क्या होता है ये हमारी उस चेतना पर कि हम ये शरीर ही हैं पर जो है और क्या करता है वाटरिंग करता है और जल देता है जिससे कि हम दूर दूर तक कभी भी किसी भी तरह से इस मुकाम पर ना पहुंच पाए या इस रियलाइजेशन पर ना पहुंच पाए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। आसपास का सारा वातावरण केवल ये याद दिलाने के लिए है कि आप शरीर हैं और आप इस संसार का भोग कीजिए। आप खुद देख सकते हैं कई लोग यहां पर हो सकता है कुछ लोग नए भी हों बट जनरली जो श्रीमद् भागवतम कक्षाओं में आता है या कुछ लोग पुराने हैं वो सब जानते हैं कि हम सब लोग यहां पर बैठे हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। जब व्यक्ति अपनी असली पहचान को भूल जाता है सारी समस्या वहां से शुरू होती है और असली पहचान हम जन्मों जन्मों से भूले हुए हैं। जो लोग नए होंगे वो कहेंगे कमाल है असली पहचान का मतलब क्या बात। असली पहचान का मतलब कि वास्तव में हम लोग अपने आप को शरीर ही माने बैठे हैं या जो कास्ट या जो उपाधि हमारे साथ है हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं वही अपने आप को समझते हैं और इस संसार को अपनी भोग्य वस्तु मानते हैं कि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है और इस प्रकार भूले रहते हैं आध्यात्मिकता को। लेकिन फिर भी इन सब में से कुछ लोग जैसे भगवान श्रीमद् भगवद गीता में ही बताते हैं बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद अब बहुत जन्म मतलब नाना प्रकार की योनियों में भी लिए होंगे कई बार मनुष्य भी बने होंगे देवता भी बने होंगे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव अर्थात कई तरह के ब्रह्मांडों में भी भ्रमण किया होगा। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते इतने जन्मों में भटकने के बाद कोई एक जीवात्मा ये समझ पाता है क्या जो ज्ञान में आता है वो महात्मा क्या समझ पाता है वासुदेवम सर्वमिति सब कुछ जो है वो कौन है वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। मेरे जीवन में आने वाले सुख और दुख या आने मिलने वाली योनियां ये जो मिली थी योनियां इन सब के कारण कृष्ण है वासुदेवम सर्वमिति। और जो व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ वास्तव में कृष्ण ही सब कारणों के कारण है तो बता रहे भगवान ही कह रहे हैं ऐसा महात्मा जो ये समझ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं स महात्मा सुदुर्लभ बहुत ही दुर्लभ है
दुर्लभ भी बोल सकते थे, लेकिन सू लगाए वो तो वेरी रेयर, बहुत ही मुश्किल मिलते हैं ऐसे लोग। और हम प्रयास कर रहे हैं सू दुर्लभ बनने का, क्योंकि वासुदेवम सर्वमिति हम लोगों को भी पूरी तरह क्लियर नहीं है कि सब कुछ भगवान ही है क्या, सब कुछ कृष्ण ही है क्या। तो कई लोग जो है कंफ्यूज ही रहते काफी समय तक और पूरी तरह भगवान को समर्पित भी नहीं हो पाते। जबकि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में और यही श्लोक आगे भी चलकर दूसरे स्कंद में भी आता है, जिसमें नारायण करके बोला गया है दूसरे अध्याय में, और पहले अध्याय में पहले स्कंद में वासुदेव करके कहा गया, जिसमें बोला गया है वासुदेव परा वेदा वासुदेवम परा मखा वासुदेवम परा योगा वासुदेव परा क्रिया। इस श्लोक का मतलब क्या है कि जितनी भी क्रियाएं जो हम बता रहे हैं, वासुदेव परा वेदा अर्थात वेद जानने योग्य कौन है, वासुदेव ही है, या वेदों के द्वारा वासुदेव को ही जाना जाता है। जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं वेदेश सर्वम अहमेव वेद, कि वेदों का अल्टीमेटली जो गोल है वो ये कि आप मुझे जानो, वासुदेव परा वेदा अर्थात वेदों का जो अल्टीमेट गोल है वो भगवान को जानना है। वासुदेवम परम अर्थात जो यज्ञ इत्यादि हुआ करते थे वो किसकी प्रसन्नता के लिए होते हैं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि यज्ञ जो है विष्णु को ही कहते हैं, और उन सब का अल्टीमेट गोल होता है कि भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए किया जाए सभी क्रिया। वासुदेव पर योग, योगी लोग जो हैं जो योग इत्यादि करते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, वासुदेव कृष्ण को अर्थात विष्णु को अपने हृदय में देखने का। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत से योगी हैं लेकिन मुझे कौन से पसंद है, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सामयुक्त तमो मत। अर्थात जो योगी अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं या भगवान श्री कृष्ण के एक्सपेंशन चतुर्भुज रूप को देखने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी इंद्रिय अपनी वाणी अपने मन को भगवान की सेवा में जिन्होंने रख दिया, भगवान कह रहे हैं ऐसे जो योगी हैं वो मुझे प्रिय हैं। तो अल्टीमेटली योग के द्वारा भी जो है भगवान को प्राप्त करने की बात कही जा रही है। और जिस तरह का हम योग करते हैं या जो बड़े बड़े टीवी स्टार करा रहे हैं योग या स्टार्स करा रही हैं योग सुनने में आए, तो वो योग केवल एक फिजिकल मेंटेनेंस के लिए है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, जिस तंदुरुस्त शरीर से हम और अधिक पाप अर्जित कर सकें। एक भक्त योग करता है प्राणायाम इत्यादि करता है वो इसलिए ताकि मेरी उम्र अधिक हो या जितनी भी है वो ठीक रहे, कष्ट ना आए, ताकि मैं इस शरीर का सदुपयोग भगवान की सेवा में कर सकूं। एक मटेरियलिस्टिक आदमी योग करता है, भागता है दौड़ता है सब कुछ करता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है, इंद्र तृप्ति, कि मैं अपनी इन इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा विषय भोग में लगा सकूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वहां जाकर ये सब खाया था तो अगले दिन मेरा पेट खराब हो गया था, या मैं अभी कुछ दिन से योग नहीं कर रहा हूं तो मेरा पेट बाहर आ रहा है ना, या मेरी चर्बी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, भोग के लिए योग करना चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति सुबह सुबह उठकर या शाम को जाकर कहीं पर भी जाकर वो योग करता है, एक्सरसाइजेस करता है, और उद्देश्य होता है कि मैं भोग कर सकूं। लेकिन भक्तों के लिए जो जानते हैं वासुदेवम सर्वमिति, अगर वो योग करते हैं अर्थात उसका मतलब क्या है कि वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। 60-70 साल जितना भी हमारा समय है, एक व्यक्ति उस समय में अधिक से अधिक पाप कमाता है पूरे जीवन, और एक भक्त अधिक से अधिक पुण्य कहें या सुकृतियां इकट्ठी करता है या भक्ति करता है, उसी शरीर को लगाता है उसी समय को। फिर कहा वासुदेव पर क्रिया, सभी क्रियाएं भक्त की जो क्रियाएं हैं वो सेंटर्ड हैं कृष्ण को अर्थात कृष्ण को समर्पित हैं, लेकिन जो अभक्त है उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसके बाद इसके अगला श्लोक है वो भी यही है कि वासुदेव पर तपा वासुदेव पर ज्ञानम वासुदेवम परो धर्म वासुदेवम परम गति। धर्म तप और गति और ज्ञान, जैसे आज के श्लोक में भी है कि कुछ लोग जो थोड़ा बहुत समझते हैं या धार्मिक दिखना या लगना चाहते हैं या बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ तपस्याएं भी करते हैं, कुछ ना कुछ व्रत भी रखते हैं, लेकिन इन व्रतों का, इन दान का, इन तपस्याओं का दो तरह से काम होता है कि एक तो वो चाहते हैं कि इस जो हमने तपस्या करी इसका हमें कुछ फल प्राप्त हो, हम शुद्ध हों, हमारे जो पाप हमने कर दिए वो जो हो बराबर हो जाए। तो कई बार जैसे आज के श्लोक में है कि लोग दान करते हैं, तपस्याएं करते हैं, व्रत इत्यादि रखते हैं अपने पापों की निवृत्ति के लिए, लेकिन इसी ग्रंथ में कुछ समय पहले बताया गया था कि जिस प्रकार जंगल में जब आग लगती है और आग लगने के बाद सारा जंगल राख हो जाता है, एक व्यक्ति के जीवन में जैसे ये बड़े बड़े पाप हो रखे हैं मान लीजिए, और आग से या तपस्या इत्यादि से या दान इत्यादि से या व्रत इत्यादि रखने से, समझ लीजिए समझ जंगल में आग लगी और उसने सारे के सारे वन को जला दिया, अर्थात पाप पुण्य सारे पापों को समाप्त कर दिया। लेकिन बताते हैं जैसे ही वर्षा शुरू होती है, क्योंकि वृक्ष जले हैं ऊपर ऊपर से, उनकी जड़ अभी भी नीचे है, तो वर्षा इत्यादि आने से फिर से वो सब अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं और फिर से वो फलित होना शुरू होते हैं, फिर से फिर उसका पूरा का पूरा जंगल जो है हरा भरा हो जाता है, पाप पूर्ण जीवन का जो है उसका वो हरा भरा हो जाता है। तो बता रहे हैं कि भक्ति इतने, जैसे वासुदेव सरस्वती कहा कि अर्थात भक्ति या भगवान के पवित्र नाम इतने शुभ हैं कि जब हम लोग इस प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, पाप तपस्या व्रत इत्यादि, और उसके शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं कि भाई ये पाप हमारे खत्म हो जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आज के श्लोक में कह रहे हैं किंतु ये पुण्य कर्म जो हम करते हैं किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का अनुमोल नहीं कर सकते। इच्छाएं तो समाप्त नहीं हुई ना, मन तो अभी भी वही है जो करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है, सटल बॉडी तो वही है हमारे साथ, इसने जो एक्सपीरियंस किया आज तक, इसके अंदर जो संस्कार है, जो इस भौतिक जगत को भोगने की वासना, वो एज इट इज बनी हुई है अभी ना, और ये बने रहने के कारण ऐसा व्यक्ति अगर कुछ रिचुअल्स कर भी ले, जैसे कि कई बार देखा गया जो बड़े वैश्य परिवारों में इतने बिजी होते हैं धन बिजनेस बढ़ाने में कि वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने यहां पर पुजारी रखते हैं, उसको पैसे देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनके घरों में विग्रहों की वो क्या करते हैं, पूजा अर्चना करता है, वो स्कूटर बाइक पे आएगा, साइकिल पर आएगा, पूजा करेगा, सबको तिलक लगाएगा, मंत्र पढ़ेगा, एक घंटा पूजा करके जाएगा, उसको सैलरी फिक्स है, ठीक है, कुछ धार्मिक काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार धार्मिक कार्य किए जाते हैं, करवाए जाते हैं पैसे देकर, या अभी तो पता चला कि कैसेट्स भी आ गई है यज्ञों की, आपको कुछ यज्ञ नहीं आता कैसे चला के रखिए, मतलब खुद नहीं कुछ करना, मत इस प्रकार के उपायों से कुछ करना, तो कुछ ना कुछ लाभ पहुंचता है, कानों में कुछ जाए तो लाभ पहुंचेगा, लेकिन जो लाभ लिया जा सकता था वो नहीं लिया जा। तो इस प्रकार लोग इन दान त्याग तपस्याओं को करते हैं, लेकिन अपने करंट जो समस्याएं चल रही हैं उनको सुलझाने के लिए। और बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो इस जीवन की प्लस आने वाले जीवनों की भी समस्याओं को सदैव के लिए सुलझा दे, रूट से खत्म कर दे। तो भगवान की भक्ति वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा का मतलब है कि जो व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ वास्तव में वासुदेव अर्थात वसुदेव के जो पुत्र हैं कृष्ण, वही सब कुछ हैं, सभी कारणों के कारण हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मता सर्व प्रवर्त, भगवान कह रहे मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं और सब कुछ मुझसे ही निकलता है, जितने चांद सूरज इत्यादि जितनी भी चीजें हैं ये सब भगवान के द्वारा अपॉइंट किए हुए डेमी गॉड्स हैं। जो व्यक्ति समझ जाता है फिर वो अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि, अपना त्याग तपस्याएं, धन, अपना एक एक अंग, अपनी वाणी का एक एक शब्द वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाता है। जैसे बताया जाता है हम लोग तो क्या बिजी होंगे, पहले के युगों में जो राजा होते थे वो बिजी नहीं थे क्या, जो पूरे पूरी सृष्टि के राजा थे, अम्बरीश महाराज के बारे में बताया जाता है वो भी पूरी सृष्टि के राजा थे, बट उन्होंने क्या करा, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा, क्योंकि राजा यदि यद आचरते श्रेष्ठ, राजा जैसा कर्म करेगा सामान्य प्रजा भी उसको फॉलो करेगी। आज देश के बड़े लोग करप्ट हैं इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग करप्ट हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि पहले ऊपर वालों को पकड़ें, उनको पकड़ेंगे तो फिर नीचे वाले अपने पकड़ जाएंगे, नीचे वाले अपने ठीक हो जाएंगे। तो राजा लोग होते थे और सुबह से लेकर शाम तक अम्बरीश महाराज जी का पढ़िए वो क्या करते थे, वो वाणी से सदैव भगवान का गुणगान करते रहते थे, राज्य की सभा चल रही है तो भी गुणगान गुणगान, हाथों को मंदिर की सेवा में लगा दिया, भगवान के पुष्पों को सूंघने में लगा दिया, अपनी एक एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में, तो राज्य कौन चला रहा था फिर, क्योंकि सारे के सारे भक्त थे, अगर सारे के सारे लोग सबकी चेतना, सबका कर्म, सबका उद्देश्य एक है तो फिर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं। जब लोगों के उद्देश्य, इच्छाएं और उसके फल अलग अलग होते हैं तब कलह, कलेश और द्वंद होते हैं। जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं कि एक परिवार में हमने देखा दो चार भाई हैं, आज तक मिलकर रह रहे हैं। आज तक मिलकर रहने का मतलब क्या है कि उन सबका उद्देश्य एक है। बाइबल में कहा गया था फैमिली प्रेस टूगेदर स्टेस टूगेदर, जो सब इकट्ठे रहते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उद्देश्य एक है, वो सदैव मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन ज्यादातर हम क्या देखते हैं, घर में दो ही लोग हैं लेकिन फिर भी कलेश, फिर भी प्रेम। क्यों? क्योंकि उद्देश्य एक नहीं है। इसलिए राजा अम्बरीश महाराज को मालूम है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, अपनी प्रजा को, अपने मिनिस्टर्स को भी भगवान की, वो भी देखकर भगवान की सेवा में लगते हैं। इसी प्रकार जिस मैनेजमेंट में या जिस कल्चर में सबका उद्देश्य एक है, उस जगह पर फिर वास्तव में मैनेजमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, इशारों से काम हो जाता है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे अब इस्कॉन टेम्पल्स की बात करते हैं, पूरे संसार में सारे इस्कॉन टेम्पल में आप कौन से विग्रह देखते हो? राधा कृष्ण, कृष्ण भक्ति, वासुदेव कृष्ण की एक्सपेंशन, ये सब देखते हैं ना। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी लगाया हुआ है, या किसी पर्टिकुलर मंदिर का उद्देश्य अलग है। हम सारे मंदिरों को देखते हैं कि सबका उद्देश्य एक है, और सबका क्योंकि उद्देश्य एक है, एकला ईश्वर कृष्ण, अर्थात एक उद्देश्य है, कृष्ण उद्देश्य है, इसलिए एक मंदिर दूसरे मंदिर से, जैसे आज 250 देश है तो 250 देशों में लड़ाई झगड़े हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर प्रॉब्लम है, लेकिन इन मंदिरों में आपस में कोई झगड़ा थोड़ी है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक है और सारे के सारे लोग एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। रूपाल जी ने जो नियम बनाए और उन नियमों के द्वारा आप देख सकते हैं पूरे संसार में कहीं पर जाइए वही मंगला आरती, और कोई अलग स्टाइल की मंगला आरती नहीं है, संसार दावा नल लीलो का है ना, गुरु पूजा, जप करना, भागवतम क्लास होना, संध्या का आरती होना, फिर भगवदगीता क्लास होना, इस सारा इसका सारा एक ही कल्चर है। इसलिए जो व्यक्ति पंजाबी बाग में ट्रेंड हो रहा है भक्ति कर, अगर वो अमेरिका में भी जाकर सेटल होना चाहे तो वो इजीली सेटल हो जाएगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा, बस लोग थोड़े शक्ले हो सकती हैं, कल्चर वही होगा, वही सब्जी रोटी दाल चावल खाने को मिलेगा उसको है ना, और वो कहने का मतलब वो प्रसाद होगा, भगवान को ऑफर्ड प्रसाद होगा। तो बहुत आसानी से कोई भी इस कल्चर में आके फिट हो जाता है, और किसी भी जगह जाकर, किसी भी देश में जाकर, जैसे मायापुर से जब नाना प्रकार के, मायापुर में देखते हैं हम लोग नाना प्रकार के विदेश में सारे विदेशी भक्त आ रहे हैं अलग अलग भाषाओं के। रूपा जी के ग्रंथ 100 से अधिक लैंग्वेजेस में आज ट्रांसलेटेड है, पता नहीं कौन से व्यक्ति किस 10,000 की संख्या वाला देश में भी ट्रांसलेटेड है ग्रंथ, वो भी पढ़कर भक्त बन जाता है, हरे कृष्ण वो भी करता है, जो मायापुर जैसे देश में आता है, मायापुर जैसे नगर में आता है, तो जब देखता है हा हा हजारों भक्त अलग अलग जाति, बोली, रंग, रूप, कद काठी, अब जैसे चाइनीज की डिवोटीज हैं वो, या कोरिया के डिवोटीज होते हैं, एक हमने फोटो देखी थी उसमें लिखा था कि बताओ, नहीं ऐसा था कि मतलब आर दे अवेकनिंग और समथिंग, ऐसे कुछ स्लोगन लिखा था, क्योंकि उसमें ना सब बच्चों ने इकट्ठी फोटो खिंचवाई थी, और जैसे लग रहा था फोटो देखकर कि सबने आंखें बंद कर रखी हैं ऐसे, लेकिन सबकी आंखें खुली हुई थी एक्चुअली, लेकिन क्योंकि उनकी खुलती नहीं है पूरी तो लग रहा था जैसे एवरीबॉडी स्लीपिंग। तो मतलब हर जाति का, हर व्यक्ति, हर रंग का, हर रूप का व्यक्ति उस देश में, उस मायापुर देश में पहुंचता है, लेकिन सबकी लैंग्वेज एक है, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार वासुदेवम सर्वमिति का मतलब है कि सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि भगवान जो है परम कृष्ण है, और उनकी ही भक्ति जो है हमको इन सब चीजों से, जैसे आज के श्लोक में बताया गया कि हम लोग जितने मर्जी अपने प्रयास कर लें, अगर हम लोग किसी भक्त के द्वारा या ग्रंथों के द्वारा, प्रमाणिक ग्रंथों के द्वारा गाइडेड नहीं है, तो हम जो भी करेंगे, जैसे जो लोग मूवमेंट से जुड़ने से पहले जो लोग करते थे, अगर हर कोई बताना चाहे तो सब जानते कि हमारा भक्ति का स्टेटस क्या था, हम क्या करते क्या थे, हम लोग भक्ति के नाम पर क्या, मतलब बोले तो ड्रामा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि भक्ति के नाम पर क्या ड्रामा क्या करते थे, कुछ पता नहीं होता था। आज भी आप किसी व्यक्ति से बात कीजिए, क्या करते हो? जी मैं धार्मिक हूं। हाँ तो क्या धर्म, क्या मतलब धर्म का मतलब बताइए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्या करते हो, कितना करते हो, कैसे करते हो, नाना प्रकार के मंत्र जप रहे लोग, ऐसे ऐसे मंत्र की जो लोगों ने बनाए अपने हिसाब से, कोई मतलब ही नहीं है। और इस प्रकार अगर कुछ थोड़ा बहुत देखा भी, समझने का प्रयास भी किया, लोगों को देखकर करना भी चाहा, तो वो भी मिक्स्ड है नाना प्रकार की इच्छाओं से और फलों से। तो जो लोग यहां पर अब जुड़े हैं, जो जुड़ रहे हैं या जो जुड़ चुके हैं, उन सबको अब सिद्धांत धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। हमारे उस मूवमेंट से जुड़ने वाला एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा भक्त भी एक बहुत बड़ा प्रचारक होता है। क्यों प्रचारक है वो? क्योंकि वो जानता है, जैसे एक बार प्रभुपाद जी ने एक असेंबली में एक व्यक्ति से पूछा कि चलो आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो जरा बताइए क्या फॉलो करते हैं आप, किसको भगवान मानते हैं, आप बता सकते हैं कि भगवान कौन है? कहते तो ये बड़ा गहरा विषय है, इस पर काफी समय चाहिए। प्रभुपाद ने कमाल किसी बात बताने में, भगवान कौन है काफी समय चाहिए। प्रभुपाद ने गुरुकुल के बच्चे को बुलाया, उसे पूछा कि कैन यू टेल मी हु इज गॉड? तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कि भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी। कहते हमारे छोटे से बच्चे को भी मालूम, और तुम लोग रिसर्च कर रहे हो, इसमें तुम्हारा जीवन लग गया, तुम्हें मालूम ही नहीं है क्या आकृति है नहीं है। हम जगन्नाथपुरी गए, उस जगन्नाथपुरी में हजारों लाखों लोग हैं और दुनिया भर में लोगों ने कहीं अपने टेंट लगा रखे हैं। तो वहां पर एक संस्था है जो बहुत स्त्रियों से भरी हुई संस्था, एक मतलब ब्रह्मचारिणी स्त्रियां हैं उसमें बहुत सारी, उनसे भरी हुई संस्था है। तो वो लोग भी वहां पहुंचे हुए थे, वो मुझे प्रचार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं इसका रंग रूप देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, कपड़ा देख रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद भी हमें बोल रहे हैं आइए हमारा कोर्स अटेंड कीजिए। मैंने कहा कमाल है, मैंने कहा है क्या आपके कोर्स में? कहते जी हम लोग भगवान के विषय में बताते हैं। तो मैं कहता हूँ पागल लग रहा हूं मैं, ये सब कुछ कर रखा है, ये किसके लिए कर रखा है मैंने, है ना? वो खुद कुर्ते पजामे में था। तो मैंने कहा क्या क्या फिलॉसफी क्या है, क्या सिद्धांत क्या आपका, क्या बताना चाहते हो आप जो फॉलो करते हो? कहते जी हम परम पिता परमेश्वर, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोगों की गलत फहमी है वो दूर करो, परमात्मा कण कण में नहीं है, परमात्मा आपके हृदय में भी नहीं है। मतलब ये क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही सेम इनकी फिलॉसफी, एक जगह कोई व्यक्ति का देहांत हुआ तो वहां पर भी ये दो लोग पहुंचे हुए थे लेक्चर देने के लिए। पहले इन्होंने बोलना शुरू करा ये बहुत गलत बात है कि लोग सोचते हैं कि परमात्मा हर एक के हृदय में। आप लोगों ने आज से पहले सुना है? कितने लोगों ने ये सुना है कि हर एक के हृदय में परमात्मा होते हैं? सबने सुना है ना? ये एक नई फिलॉसफी आई है जो कहते हैं हर एक के हृदय में परमात्मा नहीं है। कैसे हो सकते परमात्मा, बट कैसे सकते हैं परमात्मा, और एक शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दो रह कैसे सकते हैं? ऐसे बता रहे थे और लोग नीचे हंस रहे हैं। मतलब एक अजीब सी फिलॉसफी, एक अलग से सिद्धांत। मैंने कहा क्या सिद्धांत क्या है आपका, किस बेस पर, किसके चाचा जी ने बनाई, किसने किताब बनाई है? कहते नहीं, चार युग भी कहते जो होते हैं ना जी, वो इतना समय के नहीं होते, वो 1250 साल के होते हैं। मैंने कहां लिखा है? मैंने कहा बता रहे शास्त्र में, भगवान कह रहे हैं हृदय हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में रहता हूं, अंगुष्ठ मात्र है ना, अंगुठ एक अंगूठे के आकार के रूप में रहता हूं। मैं ये किसने बोला? ये कंफ्यूज नहीं मालूम, नहीं जी हमारे यहां तो हमने यही सीखा है। तो इतनी बड़ी संस्था है, वो इतने हजारों लोग अपने जीवन समर्पित कर रहे हैं, देश में पहले 1000 पुरुषों के बाद अगर आप वो देखें, 1000 पुरुषों के स्त्रियों का अगर जो कैलकुलेशन होती है कि 1000 लड़कों में 900 या 950 लड़कियां हैं, मतलब 50 को ब्रह्मचारी बनने पड़ेगा या कुंवारा रहना पड़ेगा, मतलब लड़कियां कम है देश में, गांवों में मार शुरू बचपन में मार दिया जाता है या गर्भपात करा दिया जाता है या रेशो वैसे ही कम है। केरला में केवल ज्यादा है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, केरला में 1000 पुरुष के ऊपर 1100 स्त्रियां हैं। तो पहले ही कम थी स्त्रियां और वो इतनी बड़ी संस्था बनाई है केवल ब्रह्मचारिणी बनाने के लिए। तो जो होपलेस हैं या जो इस तरह के, वो हमारे यूथ फोरम में ज्वाइन कर सकते हैं और आगे प्रचार कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इतनी बड़ी संस्था, इतनी मात्रा में लोग हैं लेकिन कुछ सिद्धांत नहीं है। और फिर अचानक साइड में कोने में ले जाके बताते हैं, कहते हैं वास्तव में आपको मालूम भगवान कौन है? कहते वो भगवान ही नहीं जिसे आज तक हम मान के आए हो। कौन है भगवान? भगवान तो ये हैं, अलग से किसी को भगवान बता रहे। तो इतना अंधकार है समाज में, और जो थोड़े बहुत लोग भगवान की भक्ति से अट्रैक्ट होते भी हैं या पुण्यकर्मी जो हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उनको तो ज्यादा से ज्यादा भक्ति का मतलब क्या है कि हमारे सारे पाप कट जाएं बस। अब सारे पाप कट तो जाएंगे पुण्य तपस्या इत्यादि कर, लेकिन ये फिर निकल आएंगे, इच्छाएं समाप्त थोड़ी हुई हैं। इसलिए हम अपने मन के वेग के द्वारा, उन इच्छाओं के द्वारा फिर से पाप कार्य में रत हो जाते हैं। लेकिन यहां बता रहे हैं कि किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो फिर ये सारे के सारे पाप जड़ से, मन की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर पाप क्रिया से व्यक्ति बच जाता है। इसलिए यहां पर आने वाले भक्तों को हम लोग नाम की महिमा सब जानते हैं कि अगर भगवान का हम लोग एक बार भी नाम ले लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि टेंडेंसी वही बनी रहती है तो फिर शुरू हो जाते हैं पाप। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वो निरंतर भगवान के नामों का जप करता रहे। हमारे मंदिर से जुड़ने वाले भक्त एक दिन में 16 माला का कम से कम जप करते हैं। तो कम से कम 16 माला का जप करने का मतलब क्या है कि वो 16 माला का जप और चार नियम जो बताए जाते हैं उनका पालन करने से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। और उसके बाद जो सेवाएं इत्यादि की जाती हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से जब गुंडीचा मंदिर मार्जन इत्यादि किया तो सेवा करते करते वो भगवान के नाम ले रहे थे, हरि हरि कृष्ण हरे कृष्णा भगवान के नाम ले रहे थे। क्योंकि सेवा करते वक्त केवल हमारी स्पर्श इंद्रिय अर्थात हम लोग भगवान की सेवा में तो लगे लेकिन बाकी सेंसेस क्या कर रहे हैं, तो फिर बाकी सेंसेस को कैसे एंगेज करें, तो वो भगवान की सेवा में इस तरह भी लगते थे। यहां तक कि प्रसाद ग्रहण करते समय भी प्रार्थना करनी और प्रसाद का एक कोर खाने के बाद भी भगवान का एक बार नाम लेना फिर दूसरी कोर अंदर जाते। अपने जीवन की अपने आचरण से दिखा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखकर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जब ये हरि नाम हमारा उद्धार करने वाला है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम किसी ही उद्धार होगा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है नहीं है, तो फिर क्यों इतने लेजी हैं हम भगवान के नाम को लेने। क्यों ऐसा होता कि केवल 16 माला कर फिर वो माला ढूंढनी पड़ती अगले दिन कहां रखी थी। रूपा जी कहते थे कई बार देखते किसी का बीट बैग पड़ा है तो कहते हुज बीट बैग इज क्राइंग, किसका बीट बैग रो रहा करहा रहा है, मेरा मालिक कौन है, है ना। तो 16 आगे और बढ़े, हर क्रिया हर सेवा करते हुए भगवान के नामों को जप करें। ये ऐसा प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है, सेवा कर रहा है तो बीच में खाली है, आप देखेंगे कुछ समय के बाद हरिनाम चल रहा है, हो सकता है आपका मन अपने दूसरी जगहों पर भी लगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिवा को आदत हो गई है भगवान का नाम लेने की। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, जो लोग बोलते हैं जैसे हमारा 24 घंटे चलता रहता है, तो जो 24 घंटे चलने वाली स्थिति पर ऐसे लोग नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो लोग वास्तव में प्रयास कर रहे हैं उनको मालूम है कि मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और पहले तो मैं ये बोलता था क्या कि हमारे अंदर तो 24 घंटे चलते रहते हैं, तो जो भक्ति करने के लिए आता है आगे और अनर्थ निवृत्ति करने का प्रयास करता तब उसको मालूम पड़ता है कि ये अनर्थों की निवृत्ति कितनी मुश्किल है, मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, जब 16 माला में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है व्यक्ति को मन को वापस लाने के लिए, पूरी की पूरी माला खत्म हो जाती, तीन तीन चार चार भी खत्म हो जाती, तब पता चलता कि वो चार हो गई या दो हो गई या पूरी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मन उन पूरे पुराने संस्कारों पे या भूतकाल में या भविष्यकाल में तैरता रहता है, उन सब चिंताओं में लगा रहता है। क्या हम माला शुरू करने से पहले ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ये डेढ़ या दो घंटा जो मैं देने जा रहा हूं, है ना, पहले तो अपने से बात करें कि मैं किसी भी प्रकार का थॉट या किसी भी प्रकार का विचार या किसी भी प्रकार का और कोई कार्य नहीं करूंगा, इन दो घंटे में क्या करूंगा, केवल जप करूंगा। और इस मन से अगर हम तैयार होकर जप करने जा रहे हैं और हम लिख भी दें तो उससे क्या होगा कि हम लोग को मालूम है कि ये दो घंटे में इसी को दे रहा हूं, इसमें बीच में कितने इंपॉर्टेंट काम भी याद आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं जब भी सुनूं अपना हरिनाम ही करूं। हाँ, दो घंटे के बाद मैं बात करूंगा सबसे, दो घंटे के बाद मैं सारी चीजें करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कम से कम इन दो घंटों को तो अच्छे ढंग से दूं। तो जब हम लोग हरिनाम के प्रति सीरियस होंगे उनको लेने के लिए, हम लोग जब इसको सिंसियरली चैंट करेंगे तो फिर हरिनाम हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हरिनाम प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ये हरिनाम क्योंकि भगवान का एक भगवान ही है, भगवान से भिन्न नहीं है, तब ये हरिनाम हमारे ऊपर कृपा करें। और जब हम लोग भगवान के, जैसे एक सीन चैतन्य चैतन्य में आता है, प्रकाशानंद सरस्वती जो थे वो बहुत ज्यादा जो है मायावादी थे, और चैतन्य महाप्रभु को खूब जो है उनके बारे में हर जगह सुनते थे कि एक सन्यासी है, बड़ा सुंदर सन्यासी है, सड़कों पर नाचता है, कीर्तन करता है, हरिनाम संकीर्तन करता रहता है, कोई वेद वेदांत नहीं पढ़ता, तो बड़ी उनकी जो है आलोचना करते थे, कोई भी मिले तो निंदा शुरू कर देते थे। तो किसी तरह एक ऐसा वो दृश्य आया कि बड़े सारे मायावादी इकट्ठे थे और प्रकाशानंद सरस्वती वहां पर थे और चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच ही गए। शुरू से लेकर अंत तक वो उनकी निंदा करने वाले व्यक्ति और वहां पर पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे और उस जगह पर बैठे जहां बाहर सब लोग अपने जूते इत्यादि उतारते हैं, चैतन्य वहां बैठे, वहां प्रकाश आ रहा था काफी। तो प्रकाशानंद सरस्वती मिलने चले गए चैतन्य महाप्रभु से, और जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तो चैतन्य महाप्रभु का रंग देखकर, उनका सुंदर आकर्षण भरा तेज देखकर उनसे रहा नहीं गया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़ा अपने साथ ही बिठा लिया। वो बातें सब भूल गए, कौन थे मैं, क्या बोलता था उनके प्रति, क्या मैंने इनकी आलोचना करी, उनके साथ बैठ गए और थोड़ी देर निहारा, बड़े इंप्रेस हुए और फिर बोला, मन में आया ये लड़का बड़ा अच्छा है और अगर ये वेदांत पढ़ेगा तो कल को अच्छा वेदांतिस्ट हो सकता है, मेरे काम आएगा, प्रचार करेगा मायावाद का। तो उसने कहा, तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सड़कों पे नाच रहे हो, एक सन्यासी होके, सन्यासी का काम क्या ये होता है, सन्यासी का काम क्या है, वेदाध्ययन करना, वेदांत का अध्ययन करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बड़ा सुंदर दो तीन प्यार पढ़ेंगे, उन्होंने कहा चैतन्य होगा उनको श्रीपाद कहा, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मुर मूर्ख देखी करिला शासन। मैं मूर्ख हूं, वेद पढ़ना वेदांत पढ़ना ये तो बुद्धिमान वालों का काम है, मैं मूर्ख था, मेरी बुद्धि इतनी नहीं थी। तो जो मेरे गुरु हैं श्रीपाद, है ना श्रीपाद, उन्होंने क्या कहा, मुझे मूर्ख देखकर मेरे पर शासन किया। शासन करने का मतलब क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है, एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे पे शासन करता है तो उससे वो काम करवाता है जो वो करना चाहता है पूरी तरह से। कहते मैंने शासन किया और क्या कहा, इंस्ट्रक्शन दी मुझे कुछ, क्या कहा, मूर्ख देख मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार है, मुझे कहा तुम मूर्ख हो और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है वेद इत्यादि पढ़ने के लिए। तो क्या करो, कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार, तुम क्या करो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो, यही सारे के सारे मंत्र वेदों में जो मंत्र हैं, ओम से जो सारे मंत्र शुरू होते हैं या इसके अलावा जितने भी मंत्र हैं, ये सारे मंत्रों का सार है, इसलिए क्या करो, तुम मंत्र का जप करो। तो ये बता रहे प्रकाशन सरस्वती को, भाई मैं वेदों का अध्ययन में इसलिए नहीं लगा हुआ क्योंकि मैं मूर्ख हूं, ये तो तुम्हारे जैसे महान लोग कर सकते हैं, मेरे को मेरे गुरु ने मूर्ख देकर शासन किया और कहा कि तुम मंत्र जपो, और फिर कहा, कृष्ण मंत्र हेते संसार मोचन, कृष्ण नाम हेते पाव कृष्ण रचरण, कि भगवान के जैसे जब गायत्री मंत्र इत्यादि मिलता है, इससे हमारा जो संसार के प्रति जो ये संसार में हमारा जो अटैचमेंट है या जो इससे हमको लिबरेट करता है, मुक्त करता है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमें कृष्ण के चरणों तक पहुंचाता है। आज की क्लास में जो श्लोक है उसमें हमें बताया जा रहा है कि जो दान त्याग तपस्या इत्यादि की जाती है, पुण्य करते हैं, पापों को खत्म करें, हम पाप पुण्य की बात नहीं कर रहे, हम तो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं जो कि हरि नाम के द्वारा हो जाता है। हमारा उद्देश्य जीवन का ये नहीं है कि हम पापों से मुक्त हो जाएं या हमारी जो पाप है समूल नष्ट हो जाए, भक्त का ये उद्देश्य नहीं होता जीवन का। भक्त बनाता है सबसे टॉप मोस्ट उद्देश्य क्या, कि मैं भगवान के चरण कमलों को प्राप्त, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना या उन तक पहुंचने का मतलब ही यह है कि सारी चीजें हो जाएंगी। क्या कि आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी, भोग विलासिता खत्म हो जाएगी, आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, आप इस संसार के नहीं रहोगे, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। कब, जब हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। तो कह रहे फिर उन्होंने इसका रिजल्ट बताया, जब से मैं ये करने लगा तो क्या हो रहा है कि उन्होंने बोला कि बा मंत्र दीना गोसाई कि बता रहे बल जपिते जपिते मंत्र कर ल पागल। हे गोसाई, कैसा मंत्र दे दिया आपने मुझे, जब से मैंने इस मंत्र को जप करना शुरू करा है, इसका कीर्तन करना शुरू करा है, मैं अब अपने आप में नहीं रहा, इसको जप जप कर मैं पागल जैसा हो गया हूं, चैतन्य हो गया, इसको जप जप कर मैं पागल की तरह व्यवहार करने लगा हूं। अब चैतन्य महाप्रभु तो यहां पर प्रकट हुए भक्ति के उन सारे अंगों को दर्शाने के लिए, या भक्ति शुद्ध भक्ति का जो है लक्षण प्रकट किए उन्होंने। तो जैसे ही कृष्ण का जो नाम लेते थे तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर अष्ट सात्विक विकार और मतलब गिर पड़ते थे, आंखों से अश्रु धारा, तो उन्होंने कहा कि मैं पागल हो रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी स्थिति है और ये मंत्र का फल भी है। कोई कह सकता है, इवन श्रील प्रभुपाद जी कहते थे जब व्यक्ति जप करता है तो जप का मतलब है कि उसके आंखों से नेत्रों से आंसू निकलने चाहिए, क्योंकि एक प्रार्थना है भगवान के प्रति। लेकिन जब तक हमको अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति हम लोग अगर जागरूक नहीं है, हम अपने आपको शरीर ही मान के बैठे हैं और उसके बाद इस चेतना से भोग विलासिता के चेतना से हरिनाम भी ले रहे हैं, तो ये हरिनाम काम तो करेगा। तो ग्रंथों में लिखा है कि चाहे जानबूझकर लें चाहे अनजाने में लें, यह हरिनाम पूरा काम करेगा। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा दवाई अगर खा ले, वैसे तो मना करता मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती भी खिला दे तो भी दवाई काम करती है। जैसे भी कुछ समय पहले पता चला था, एक छोटी बच्ची ने अपने दादाजी की दवाई उठाई और खा ली, तो उस पर रिएक्ट कर गई भाई, क्योंकि दवाई तो अपना काम करेगी ना, चाहे छोटा बच्चा ले चाहे बूढ़ा ले। उसी तरह जब हम लोग हरिनाम लेते हैं अनजाने में तो भी वो पूरा काम करता है। और जो व्यक्ति पूर्णतः ज्ञान में लेता है उसका उद्देश्य समझकर, तो वो और लगभग हमारा फायदा करता है। तो यहां पर वो पागल हो रहे हैं भगवान के पवित्र नाम को जप कर। हम लोग क्योंकि अभी जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम लोगों को ना पीलिया हो रखा है ज्वाइंडिस, तो ज्वाइंडिस में मीठा व्यक्ति लेता है तो उसको पता नहीं चलता मीठा है क्या है, जैसे गन्ने का जब जूस पीता है। एक बाबा जी कहते हैं कि गन्ने का जूस पीते पीते ही उसका पीलिया ठीक हो जाता है और बाद में वही जो फीका जूस लग रहा था उसको धीरे धीरे मीठा लगना शुरू होता है। हमारी स्थिति संसार में अभी इसी प्रकार है कि इस संसार के सारे प्रलोभन या यहां का जो टेस्ट है वो हमें आ रखा है। टेस्ट तो नहीं है ये जो भी है, मतलब निकृष्ट टेस्ट जो है ये हमारे जीवा पे लगा हुआ है। तो जब हम लोग हरिनाम लेते हैं या भगवान की भक्ति में इन कारणों से भगवान की कथा का श्रवण करने का प्रयास करते हैं तो हमें सूट नहीं करती। कई भक्त लोग जुड़ते हैं कहते हैं हमें मंत्र सूट नहीं किया। कई जुड़ते हैं कहते हैं जी हम लोग इस्कॉन आए थे उसी दिन मेरा ये हो गया इसलिए मैंने आना बंद कर दिया। या कोई कहते हैं मैंने जैसे वो मंत्र लिया था, मंत्र लेने का जपना शुरू करा तो अचानक मैंने देखा मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया पैसों में किसी चीज में। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार लोग उसको कारण बनाकर पीछे हट जाते हैं। मंत्र जो है हमारा केवल फायदा करने के लिए। अब तक कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, इस कलयुग में अन्य युगों में भगवान ने अवतार लिया सर शरीर है ना सुंदर रूप के साथ है। कलयुग में भगवान ने क्या किया, कली काले नाम रूप, अच्छा कलयुग में नाम के रूप में भगवान अवतरित हो गए। और इस नाम का जब भी हम उच्चारण और कीर्तन करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण तेजी से होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम प्रथम श्लोक में ही कहा कि हमारा जैसे ही हम हरिनाम लेना शुरू करते हैं तो जो हमारा चित है, कितने जन्म हम ले चुके हैं तो इतने जन्मों की धूल, अब धूल क्या है, वो कंटेमिनेशन क्या है, जो थॉट्स हमारे पास थे, डिजायर्स थी हमारी, अनलिमिटेड डिजायर्स थी, जो हमने चीजें देख देखकर एक्सपीरियंसेस की, जो स्कैन किया सारा कुछ देखकर, ये सारी की सारी इच्छाएं, वो इच्छाएं जो पूर्ण हो गई, वो इच्छाएं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं, इस प्रकार की सारी कंटेमिनेटेड डिजायर की जो ये धूल है हमारे चित्त रूपी हृदय पर पड़ी हुई है इस पर, और इतनी मोटी हो गई क्योंकि एक जन्म की नहीं है, करोड़ों खरबों जन्मों की है, क्योंकि ये मन बुद्धि और अहंकार का सटल बॉडी जो है सूक्ष्म शरीर है ये हमेशा उसे वही रहता है। बस जब जलाते हैं, दफनाते हैं, कौवे किलो को डालते हैं तो ये शरीर खाते हैं वो लोग, हमारे सूक्ष्म शरीर पर डंक नहीं मारते। जब जलाया जाता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं जलता, जब दफनाया जाता है तो केवल पांच तत्वों का शरीर दफनाया जाता है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर ये दूसरे देह में परिवर्तित चले जाते हैं। तो ये वही मन है, वही दर्पण साइन, वही शीशा, वही चल रहा है हमारा। और इतने जन्मों की धूल जो लगी हुई है वो इतनी मोटी परत बन चुकी है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम भवदावाग्नि निर्वापणम, अर्थात कि भगवान के पवित्र नाम को लेने से क्या होगा, जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है जिसपे इतनी सारी जो धूल जमी हुई है इतनी किलोमीटर की, ये धीरे धीरे क्या होगी, हटने लगेगी। और अगर शीशे पे धूल है, मिट्टी है, तो हम लोग अपने को नहीं देख सकते। इसलिए हम लोगों को बार बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आता कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। समझ आता किसी को, आते नहीं, बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए, धूल पड़ी हुई है तो कैसे समझ आएगा। शीशे के ऊपर इतनी सारी परत है धूल मिट्टी की कि हम देख ही नहीं पा रहे अपने को, देखने का प्रयास करते मिट्टी दिखती है, मिट्टी से शरीर बना है, इसलिए हम अपने को देह मानते हैं और देह मान के सारे काम करते हैं। देह मानने के बाद ही हमें ये घर संसार चाहिए, देह मानने के बाद ही हमारा बिजनेस ऊपर होना चाहिए, देह मानने के बाद ही राग और द्वेष की प्रॉब्लम होती है, देह मानने की वजह से ही हम लोग बैंक बैलेंसेस रखते हैं। सारा कुछ केवल इसलिए है कि हम देह मानते हैं अपने आप। और लेकिन जो सोल मानते हैं अपने आप, उसको मालूम है अगर मैं आत्मा हूं तो फिर इन इतनी सारी चीजों की, इन बवंडर की, इन पहाड़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को शरीर के अंदर रखे रहने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत है। क्या क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, कितना कितना, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आत्मा को शरीर के अंदर रहने के लिए कम से कम 10 फ्लैट चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, गुड़गांव में डीएलएफ में मकान चाहिए, ऐसा नहीं लिखा कहीं। लेकिन क्योंकि अज्ञानता में है, माने बैठे हैं कि मैं शरीर हूं और मैं इंजॉय कर दिखाऊंगा। हमसे पहले काफी लोग आए, बहुत अच्छा अच्छा धंधा, आज तो सब लोग फटे हाल हैं, सड़क छाप हैं, रोडपति करोड़पति भी सड़क छाप ही हैं किस्म से, कारण कुछ नहीं बचा, कोई राज्य नहीं है, एक व्यक्ति गार्ड पे सलूट नहीं मारता आजकल बॉस को। लेकिन इससे पहले के युगों में लोग राजा होते थे, अपनी पूरी एक बड़ी बड़ी नगरी शहर थे अपने अपने बड़े बड़े, ऐसे लोगों ने भी भोग करने का बड़ा प्रयास किया, और क्या किया भोग में, अधिक धन सुंदरता इससे क्या करेगा व्यक्ति। इतना कुछ होने के बाद भी एक जानवर को कंपीट नहीं कर सकता व्यक्ति, चाहे वो राजा भी हो। एक जानवर की भांति भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर सकता, ये यूं नहीं कह सकता कि सुअर से ज्यादा मुझे आनंद आता है जब मैं हलवा खाता हूं, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि सुअर को मल खाने में उससे ज्यादा आनंद आता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद भी ये सब वापस एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी, तपस्या ही है ना, सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति भागता है, तपस्या है कि नहीं, इतनी तपस्या करी इन सब चीजों को इकट्ठा करने में, और उसके बाद इन सब चीजों को एज इट इज छोड़ के जाना पड़े, कितना टाइम वेस्ट किया। और यही टाइम अगर हम लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए करते, फ्यूचर प्लानिंग मतलब 20-30 साल की बात नहीं कर रहे, 20-30 साल का तो वो प्लान करता है जो व्यक्ति मानता है कि मैं शरीर हूं, जिसने माना है कि हाँ शरीर में हूं, मैं मरूंगा नहीं, ये प्लानिंग करता है व्यक्ति 20-30 साल के आगे की। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, वो आने वाली लाइफ की प्लानिंग करता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो प्रयास करे इस चित्त को साफ करने का, और जब साफ होना शुरू होता है, हमें दिखना शुरू होगा, कई झलक दिखने शुरू होती है, हाँ कुछ दिख रहा है, अच्छी सफाई से हमें दिखना शुरू होगा हमारा फेस, और एक दिन जब पूरी तरह साफ हो जाएगा तब हम देख पाएंगे। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। एक मिट्टी भरे शीशे के आगे खड़े होकर कुछ नहीं दिखता, वो भी हम हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग के द्वारा जब चित्त का मार्जन शुरू होगा तो क्या होगा, शीशा साफ होना शुरू होगा, तो हम देख पाएंगे अपने आप को कि हाँ मैं सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा था, तो फायदा नहीं हुआ। जैसे एक बार छोटा सा कई बार सुना चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी इसके अंदर शिक्षा है कि जैसे एक लोभी व्यक्ति का लोभ कभी खत्म नहीं होता, वो सदैव आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो जानता नहीं कि मैं कौन हूं और मुझे किसके लिए जीना है। तो ऐसा लोभी व्यक्ति जब राजा के पास गया, राजा सबकी इच्छा पूरी करता था, राजा ने कहा कल सुबह आना सूर्योदय के समय, तो गया सुबह सूर्योदय के समय। उसने कहा बोलो क्या चाहिए, कहते मुझे लैंड चाहिए, जमीन चाहिए मुझे, कहते ठीक है ये लो झंडा और भागो जिस दिशा में भागना है, मादीपुर साइड भागना है, पश्चिम बिहार साइड भागना है, या गुड़गांव साइड भागना है, जहां पर गाड़ कर शाम तक वापस आ जाओगे सूर्यास्त तक, उतना लैंड तुम्हारा। तो बताइए कहां भागेंगे आप लोग हैं, सारे गुड़गांव भाग रहे, क्या चक्कर है, हाँ सब लोग वहीं भागेंगे भाई। तो उसने भी भागना शुरू किया और इतना तेज भागा, एक एक क्या स्क्वायर फीट चल रहा था एक एक कदम उसको स्क्वायर फीट हजारों के सामने दिखते थे रुपए, तो भागता था वो तेज भागा, खूब भागा, पूरी एनर्जी लगा दी, कहीं रुका नहीं, लघु शंका देर के लघु शंका के लिए भी कोई टाइम नहीं पूछा उसने, कोई पानी नहीं, स्टॉल लगे हुए, छबील लगी हुई, कुछ नहीं पिया उसने, कोई तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं ली उस रास्ते में, तपस्या, भाग रहा व्यक्ति, पहुंच गया आगे तक, देखा सर पे सूरज है, कहता लेकिन अब मैं आगे डीएलएफ के पास थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, और जितना भी आगे गया तो जब दिखा रही तो नीचे आ गए, तो सूरज तो सामने दिख रहा है, अभी तो वापस भी जाना है। शर्त क्या थी? अस्त होने तक वापस आना है। हाँ, यू टर्न लिया उसने फिर, बहुत लेट। अब कैसे भगाएगा गाड़ी भैया, एनर्जी तो पहले खत्म कर दी थी। और फिर जब भागना शुरू करा, कापा सड़ा बॉर्डर की तरफ, जहां पर टोल कटता ना, वहां उसका पर्ची कट गई उसकी, और दफना दिया गया वहीं पर। वजीर ने कहा, महाराज मैं तो डर ही गया था। कहता, मुझे मालूम है ये सब लोभी लोग हैं, इनके बस की कुछ नहीं है, ये सुबह से लेकर शाम तक भागते हैं, मुझे मालूम है ये अंत तक वापस नहीं आ सकेंगे, इसलिए मैंने कहता था काला झंडा। हमारी स्थिति में तो ये जन्म लेने से ही भागना शुरू करते हैं, बेटा ये बनेगा, हाँ बनूंगा मां, ये बनना है, ये बनना, भाग बेटा। वो बनने के बाद रेस खत्म नहीं हुई, एमबीए करने के बाद, सीए करने के बाद घर बैठता है, पैर दबाता लोगों से अपने, नहीं फिर नए जूते लेकर आता भागने के लिए, और फिर इतना भागता है, इतनी आगे बढ़ता है, थोड़ा सा और, अभी नहीं, थोड़ा सा और, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा और, अब ऐसी गाड़ी होगी तो लोग कहेंगे हाँ आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा और, इस तरह करते करते झंडा गाड़ना ही भूल जाता है, यू टर्न लेना ही भूल जाता है। 60, 65, 70, नहीं अभी भी नहीं, नहीं जाना वापिस। अरे बेटा ये कोई उम्र है? इतनी सी उम्र में तुम माला टांग के घूम रहे हो, तो खाने पीने की उम्र है। उसने खा पी के अपने दांत खत्म कर लिए, डायबिटीज हो गई, सारी स्थिति खराब है, पूरे बॉडी का नक्शा खराब हो रखा है, लेकिन वो यू टर्न वो अभी भी नहीं ले रहा। अन्यथा होना क्या चाहिए कि उसको यू टर्न लेकर बहुत तेज भागना चाहिए। भक्ति में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति वहां से कापा सेड़ा से आगे नहीं आ पाएगा। भक्ति में तो ऐसा है कि आपके अंदर इच्छा है अगर यू टर्न लेने के बाद कि हाँ मुझे जितना समय बचा मुझे भगवान के चरण कमल प्राप्त करने हैं, और अपनी पूरी मन वाणी और बुद्धि से मुझे भगवान की भक्ति करनी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, इतना बड़ा डिस्टेंस चुटकियों में पूरा हो जाएगा। सच में पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि भगवान कहते तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा, भगवान आगे बढ़ जाएंगे उसको लेने के। लेकिन हम इच्छा तो जाहिर करें, यू टर्न तो लें, कितना इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे उसका? इतना होने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी दुखी दिख रहे हैं। आज से पहले जितना राजा आए थे वो परेशान होकर चले गए, भोग विलास के चक्कर में कोई कुछ नहीं कर पाया, हम क्या कर लेंगे? हम कौन सा तीर मार लेंगे? तो बढ़िया है, जल्द से जल्द यू टर्न लें। और उस यू टर्न का मतलब क्या है कि 100% दें अपना। 100% का मतलब क्या है कि फिर 100% का मतलब ये नहीं कि कोई सोचे पूछे कल से आ जाऊं बैग ले आऊं अपना, फिर कमरा कौन सा होगा मेरा कहां लेटूंगा, मुझे मच्छर बड़े काटते। फुल टाइम मतलब उसका मतलब क्या है, 100% का मतलब क्या है कि हम लोग अपनी मन और बुद्धि को भगवान में लगा दें। और भगवान में लगाने का मतलब क्या है कि किसी भक्ति निरीक्षण में रहकर भक्ति करना शुरू कर दें, उसके कथनानुसार चलना शुरू कर दें। क्योंकि जब भक्त कुछ बताएगा, वो बताएगा तुम बिजनेस बढ़ाओ इतना करो, इतना समय भक्ति में दो, तो जब उसकी गाइडेंस में व्यक्ति भक्ति करना शुरू कर देगा तो उसकी सारी की सारी मटेरियल एक्टिविटी भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी। और वो व्यक्ति जो है उसको बताएगा कि कब कैसे कहां कितना धन भगवान की सेवा में कब और कैसे लगाया जाता है। इस प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने कर्म को, फलों को जब भगवान को अर्पित करना शुरू करेंगे, हमारा मन धन में है, जब धन भगवान की सेवा में लगेगा, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा सब कुछ जब भगवान की सेवा में लगेगा, तो बहुत आसान है इतना लंबा डिस्टेंस को भी चुटकी में पूरा कर लेना। तो क्या करना पड़ेगा सारे डिस्टेंस को खत्म करने के लिए? कलयुग का जो धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन, वो करना पड़ेगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान को अपने जीवन के बढ़िया 2-3 घंटे रोज देना शुरू कीजिए, जब खूब स्ट्रांग करिए बैठकर। उसके बाद दुनिया के भर के फालतू के बिजनेस, फर्स्ट बिजनेस इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड अर्ली मॉर्निंग, ट्राई टू चैंट अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, उससे फायदा होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ साहिब श्रीमद् भागवतम की किसी को प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। जी हाँ, प्रश्न किया कि हमारे मंदिर में मंगला आरती होती है संसार दावा न लेना, लेकिन वृंदावन में विभा वरिशेष होती है। देखिए ऐसा है, इस आरती का अगर मतलब देखेंगे तो ये गुरु की वंदना है, गुरु की एक्टिविटीज और उनकी क्रियाकलापों पर ध्यान मेडिटेशन है, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो पूरे संसार में हम प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद फिर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। वृंदावन में ये आरती 4:10 पे होती है, हाँ। क्योंकि गुरु की आरती है। हमारे मंदिर में अलग से गुरु की फोटो नहीं है, अलग से ऑल्टर नहीं है, वहां तो समाधि है इसलिए वहां पर होती है, और वहां पर जो है विभा वरिशेष एक आरती अलग से करते हैं, अदरवाइज संसार देवा 4:10 होती है। एक ही मंदिर है जहां पर 4:30 होली आरती होती है वृंदावन में, क्योंकि वहां पर ऐसा मूड है जिसमें भगवान की गुणगान लीलाओं को सुबह किया जाए तो वो करते हैं, अदरवाइज वहां पर चेला प्रभुपाद जी की आरती सुबह 4:10 होती है। ठीक है, हरे कृष्ण। अगर किसी प्रश्न की जगह तो अलग से आगे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।